जिसमें आप सबने ये सुना होगा कि अफजलुल आमाल उम्मती इंतजारुल फरज, मेरी उम्मत के बेहतरीन आमाल ये हैं कि वो फरज के मुंतजर रहें। अच्छा, फरज मतलब ये है कि आसानी, फरज यानी आम माने में हम कहते हैं कि वसअत पैदा हो जाना, आसानियां फराहम हो जाना, मुश्किल से निकल कर आसानी की तरफ जाना, इसी आसानी की तरफ जाने के अंदर से उम्मीद के की जो मीनिंग्स हैं वो भी समझ में आती है। और उम्मीद रहना यानी अच्छाई की उम्मीद में रहना, अच्छाई के लिए मुतवक्के तवक्को रखना, इस तरह के मुख्तलिफ मानी आ सकते हैं, इसके बन सकते हैं। आम तौर पर ये दुआ के अंदर भी वफर्रिज अन्ना यानी फर्रिज हुमूमिना व गुमूमिना, इस तरह के अल्फाज आए हैं। इसलिए जब हम एकेडमिक डिबेट्स या गुफ्तगू में जाएंगे, क्योंकि स्टडी सर्कल है तो जाहिर है कि आम मजलिस और तकरीर और जर्नल किस्म का कोई पब्लिक मोटिवेशन स्पीच या जो है कोई आम जो है वाद और नसीहत वाला पहलू, तो इसमें हम ज्यादा वो इस तरफ तो नहीं जाएंगे, बल्कि थोड़ी सी एकेडमिक तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे और बहुत ज्यादा खुश्क खाली खुश्क किस्म की चीज बहस भी हम नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। लिहाजा जो है इसके अंदर जरूरी है कि पहले थोड़ा सा इन चीजों को समझा जाए, ताकि हम देखें कि हमें करना क्या है असल में, असर गैबत के अंदर कैसे तैयारी करनी है, नहीं करनी है, किस किन किन सेक्टर्स के ऊपर काम करना है, नहीं करना है। सिर्फ एक थ्योरेटिकल और फिक्री बहस मुबाहसे करने हैं, लोगों को शऊर देना है, या कुछ प्रैक्टिकल कुछ ऐसे काम भी हैं जिसको हम अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि ये बात तो तय है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक आदलाना निज़ाम का कायम होना और पूरी दुनिया में खुदा के निज़ाम का कायम हो जाना, ये तो गैर मासूम इंसानों के बस से बाहर की बात है। अगर गैर इंसानों के बस में ये चीजें होती तो एक इमाम मासूम को पर्दे गैब में रखने की जरूरत ही पेश नहीं आती, और उसको जमीन व जमान उसके मुंतजरीन करार पाते इसकी जरूरत ही नहीं थी। इंसानों से ही मुखातब होकर अल्लाह फरमाता कि आपने पूरी दुनिया के अंदर ये कानून नाफिज करना है, वसलाम, और आपकी बात खत्म। मसलन कोई और इमाम या कोई ऐसी हस्ती या कोई ऐसी चीज आने के लिए नहीं है, लिहाजा अब जो करना है वो आप लोगों ने ही खुद करना है। इस तरह की आयतें होती, ऐसी आयत कहें पर नहीं मिलती कि जिसमें ये कह रही हो कि वला कतबना फिज जबूरी जिक्री अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून, हमने जो है पिछली किताबों में जैसे जबूर है उन किताबों में भी हमने ये बात कह दिया है, वही वाज़े तौर पर हमने लिखा है कि जमीन खुदा जो है ना सालिहीन के कंट्रोल में होगी। सालिहीन हैं जो वरासत रखते हैं, यानी मालिक और वरासत जो है वो साले लोग होंगे इसके अंदर, और सालिहीन से मुराद जाहिर है कि साले लोगों के दर्जात हो सकते हैं। कोई शख्स किसी लेवल का एक साले बंदा है, नेक बंदा है कोई किसी का, और इसका जो सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन है वो जाहिर है कि नबी हैं, इमाम मासूम अलैहि सलाम हैं, जो सालिहीन के कंप्लीट मीनिंग्स में आ जाते हैं। बाकी उससे नीचे जितने आम इंसान हैं वो सालिहीन के दर्जात रखता है। तो मालूम हुआ कि वरासत जो है साले तरीन फर्द को दिया जाएगा, न कि हर साले को। साले तरीन फर्द कौन है, या नबी है या इमाम मासूम है, ये सबसे साले तरीन है, कामिल हैं, अकमल हैं, लिहाजा ये ही वारिस हो सकते हैं। इसी तरह वअदुल्लाहिल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लियस्तखलफन्ना फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वयुबदिलनहुम मिन बाद खौफिहिम अमना यअबुदूनी ला युशरिकून बिही शैय्या वकफरा बाद ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल फ़ास। यानी इस तरह की जितनी भी आयात हैं ये आयात जो है वाजे करती हैं कि एक इमाम मासूम की का वजूद और एक ऐसी हस्ती जो मिन जानिबिल्ला हो उसका वजूद एक जरूरी वजूद है, उसी के जरिए से ही ये जो खुदा का एजेंडा है या प्रोग्राम है पूरी कायनात के ऊपर, पूरी जमीन के ऊपर, कि साले लोग उसके वारिस बने और खुदा का कानून नाफिज हो, खुदा का ही निज़ाम हाकिम हो जाए, ये इसके बगैर मुमकिन नहीं है। जब ये माने एक तरफ ये माने अगर होंगे तो तो दूसरी तरफ फिर कहेंगे हमारा रोल क्या है इसके दरमियान, यानी हम उसके आने का इंतजार करते रहें, क्योंकि उसके आए बगैर तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बहुत से लोग इस तरह सोचते हैं। अब हर शख्स के सोचने का एक लेवल हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग यही ख्याल करते हैं कि भाई इमाम आएगा तो ये पॉसिबल है, लिहाजा इससे पहले पॉसिबल नहीं है। इसकी तरफ यानी हर चीज को फिर उसके अंदर डालते हैं, हत्ता कि इसी के को लेकर आप देखें बहुत पहले यानी आज से कई 100 साल पहले अहले तशी में भी एक नजरिया जागा था, एक नजरिया जो है जन्म लेने लग गया था। अहले तशी में से भी बहुत सारे अफराद ने ये नजरिया बनाया, देखें इमाम के जहूर उस वक्त मुमकिन है कि जब शर अपने उरूज को होगा, शर और बुराई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अलामात में इस तरह बयान किया गया है। तो लिहाजा जो है इमाम को अगर जल्दी जहूर कराना है तो बुराई ज्यादा होनी चाहिए माशरे में, ताकि जल्दी से जहूर हो जाए। ये एक थ्यूरी बन गई बाकायदा, इसकी एक अवामी शक्ल है, उसको छोड़ दें, इसके पीछे बैकग्राउंड में एक एकेडमिक तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि क्योंकि इसमें कोई इल्मी चीज है ही नहीं कि जिसको एकेडमिक शक्ल में दिया जाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कम से कम कुछ लोग थे जो दलाइल रखते थे, अपने लिए बना चुके थे। जबकि वो जो रिवायात कह रही हैं कि बुराई ज्यादा होगी, बुराई ज्यादा होने असल में सोसाइटी को पहचानवाया जा रहा है कि इमाम के जहूर से पहले सोसाइटी की हालात क्या होंगे। तो कहा जी सोसाइटी में देखें ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, तो देखा कि सारा जो डिटेल आ रही है, जो फहरिस्त बन रही है, उसमें बुराई नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो ये परसेप्शन क्रिएट हो गया, हालांकि उसमें पॉजिटिविटी भी है, मुस्बित पहलू की तरफ भी बयान किया है, मुंतजिर और इंतजार के पहलू को भी बयान किया है। अफजल आमाल क्या है? अफजल आमाल बुराई अंजाम देना जहूर इमाम के लिए होगा, या अफजल आमाल अच्छाई अंजाम देना जहूर इमाम के लिए होगा? तो बेबुनियादी फलसफा ही मर जाएगा, बुनियादी वो ही खत्म हो जाएगा। तो अफजल आमाल उम्मती फी इंतजार फराज, तो मतलब ये होगा कि हम कहें जितना ज्यादा जुर्म करें, जितने ज्यादा गुनाह हो जाएं, ये अफजल आमाल करार पाएगा। मालूम हुआ कि दोनों साइड मौजूद हैं, दोनों पहलू इसके अंदर मौजूद हैं। लिहाजा सिर्फ ये कि बुराई ज्यादा होगी तो इमाम का जहूर गलत है, बुराई का ज्यादा हो जाना एक बल्कि रुकावट भी है बाजों का, क्योंकि बुराई बुरे लोग ज्यादा होंगे तो इमाम जहूर करके क्या करेंगे? बुरे लोगों को इमाम ने कोई ऑटोर सिस्टम के जरिए से ठीक करना है, बटन प्रेस करेंगे इमाम नऊजुबिल्ला, जबर करेंगे या सबको मार देंगे उसे अंजाम में, जितने गुनाहगार हों सबको तहतेक कर देंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक फिलोसफी के खिलाफ है। तो फिर बुरे लोगों में इमाम आके तो अकेले रह जाएंगे, इमाम के लिए एक छोटी सी करबला बन जाएगी दुनिया, जहां पे कोई भी इमाम का साथ, बुरे ने तो साथ नहीं देना है इमाम का, अच्छों ने साथ देना है। अच्छे होंगे जो उस हुकूमत उस आदिलाना निजाम को फैलाने में और बनाने में इमाम के मददगार बन के, इमाम के फॉलोअर बनकर सामने आएंगे। वरना दीप पीछे 11 इमाम तो हमारे सामने हैं, 11 इमाम में जहां जहां सोसाइटी ज्यादातर लोग अच्छे नहीं थे या ज्यादातर लोगों में खामियां थी, तो नतीजा जो है उस इमाम मासूम को बहुत मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। जेलों में रहे 14 14 15 15 साल इमाम जेल में रहे, जेल से छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं आया। अच्छा इमाम के इमाम मुहासरे में रहे, नजरबंदी में रहे, सख्ती में रहे, कोई एहतजाज करने सड़कों पे नहीं निकला, कोई उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करने नहीं, बहुत कम लोग थे, लेकिन कि नहीं था, थे कम लोग थे, माशरे की मेजोरिटी नहीं थी। इमाम से मसलन शरी मसला पूछते थे, इमाम से मसलन दुआ मांगते थे, इमाम से हुक्म शरी लेते थे, लेकिन इमाम की नुसरत के लिए खतरात सहने के लिए तैयार नहीं थे। मुश्किलात में अगर जाना पड़ता था तो नहीं जाते थे लोग, यानी ये हमारे सामने। तो अभी अगर फर्ज करें अगर बुरे लोग ज्यादा हों माशरे में और अच्छों की कोई तादाद ही ना हो, अच्छों का कोई मजमुआ हो ही ना हो, तो फिर बुरे लोगों के दरमियान तो एक ऐसे अजीम उल मर्तबत हस्ती आएंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा 11 इमामों की जिंदगी हमारे सामने है, 11 इमाम हमारे सामने मौजूद हैं कि एक वक्त में 3 इमाम मौजूद रहे हैं, 4 इमाम मौजूद रहे हैं, मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में इमाम भी हैं, हसनैन अलैहिस्सलाम भी हैं, 3 इमाम मासूम मौजूद हैं। 3 इमाम मासूम की मौजूदगी में देखा है कि माशरे की जो बागडोर है और अक्सरियत है वो इमाम के साथ नहीं खड़ी हो गई है, दूसरों के साथ खड़ी हो गई है। तो अभी भी इमाम आएंगे तो बस पता चला बुनियादी तौर पर ये सोच, ये इंटरप्रिटेशन ही गलत है। अब आते हैं, पता चला कि भाई अब عصر غیبت میں منتظرین جو ہیں وہ افضل ترین عبادت کرتے ہیں، اور افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ امام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ انتظار کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ انتظار تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ نظریں گاڑے ہوئے ہوں گے کسی چیز کے اوپر، دروازے پر فرض کریں، غیب کے پردے اور دروازے پر نظریں لگا کر کرسی ڈال کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کب آئے گا امام، کب تشریف لائیں گے، کب تشریف لائیں گے، یہ ایک معنی تو انتظار بن گیا۔ اب یہ تو معلوم ہے کہ اس انتظار کا فائدہ کیا ہے، اس میں افضل عبادت کہاں پر ہے؟ عبادت تو ایک عمل کا نام ہے، عبادت کسی ایکشن کا نام کو کہتے ہیں، تو اس میں افضلیت کہاں ہے تو عبادت کہاں ہے؟ بس میں بیٹھے بیٹھے رہے، ٹکٹکی لگا کے بیٹھے رہیں، کچھ بھی نہ کریں، تو اس بیٹھنے کا نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ سوسائٹی میں اچھائی پھیلے گی یا برائی پھیلے گی؟ سوسائٹی میں عرض کر رہا تھا کہ معلوم ہوا کہ پاس جو انتظار ہے یعنی افضل عبادت ہے، افضل عبادت تبھی ہے کہ عبادت کسی عمل کا نام ہے، کسی ایکشن کا نام ہے، آرام سے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ آرام سے بیٹھنے کا جو نتیجہ بنے گا انتظار اس معنی میں کہ جیسے ہم اردو اور فارسی اور دیگر زبانوں میں کرتے ہیں کہ میرا انتظار کرو، انہیں بیٹھے رہو، رکے رہو، دیکھتے رہو ایک جگہ پہ، اس کا مطلب نتیجہ یہی ہوگا کہ معاشرہ جو ہے اور انسانوں کی اکثریت امام کے ظہور کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امام آئیں گے تو ایک ایسی سوسائٹی میں آئیں گے جہاں پر زیادہ تر لوگ امام کے مخالف ہوں گے، یعنی زیادہ سے مراد یعنی 99% لوگ امام کے مخالف ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ پھر یہ ہے کہ ایک کربلا کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں یہی ہوگا کہ امام کو پھر ہل من ناصر ینصرنا، ہل من مغیث یغیثنا کی صدائیں بلند کرنی ہوگی۔ تو یہ تو بنیادی جو غیبت کی فلسفی ہے، غیبت کی جو حکمت ہے خداوند متعال کی طرف سے، اس کا مخالف ہے۔ بس انتظار کا مطلب آرام نہیں ہے، آرام سے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ مصروف رہنا ہے اور عمل کرنا ہے، تیار رہنا اور تیاری کرنا اور دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے، یہ واضح ہو گیا۔ بس منتظرین کی ایک ذمہ داری انتظار کرنا ہے، اور یہ انتظار افضل ترین عبادتوں میں سے قرار دیا ہے معصومین علیہ السلام نے، اور یہ جو عبادت ہے اس کا مطلب آرام سے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ مصروف رہنا، عمل کرنا، تیار رہنا، تیاری کرنا، تیاری کرانا ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے یہاں سے کہ بھائی ٹیکنیکلی ہم نے ڈسکس کی اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ افضل ترین عبادت انتظار ہے، انتظار آرام نہیں ہے، اور بلکہ عمل، اور عمل کا نام ہے، عمل وہ ہے جو ظہور، عصر ظہور کے لیے تیار ہونا، تیاری کرنا، اور اسی کے لیے مصروف رہنا، اور اسی کے لیے جو ہے ساری ایفرٹس کو خرچ کرنا ہے، یہ واضح ہو گئی بات۔ اب سے پھر آگے ایک تو ہمیں اپنا فریضہ پتہ چل گیا کہ بھائی عصر غیبت میں ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں انتظار امام انجام انتظار امام میں رہنا ہے۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہماری مصروفیات رہنی ہے، کچھ نہ کچھ ہماری کچھ ایسے کام ہیں جسے ہم نے انجام دینا ہے جو امام کے ظہور سے ہماہنگ رکھتے ہوں، اس کے ساتھ میچ کرتے ہوں، اس کو ایک سپورٹیو رول کے طور پر سامنے آتے ہوں، ناصرین کے طور پر آ جائے سامنے، اور اس پورے ایک جو گلوبل اور یونیورسل اور انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے اس کے ساتھ میچ کرنے والا کچھ کام ہونا چاہیے۔ یہ ہماری سمجھ میں یہ بات یہاں تک آ گئی، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اب تھوڑا سا جاتے ہیں ٹیکنیکلی اور اکیڈمیکلی کچھ طریقے سے، انتظار کو ڈیوائڈ کیا ہے مختلف اس میں کہ انتظار کو عام کہا گیا ہے، بعض اوقات خاص کہا گیا ہے۔ عام اور خاص سے مراد وہی ہے جو شروع میں ہم نے بحث کیا کہ عام انتظار عام سے مراد، کیونکہ بیسیکلی اور بھی یہ انتظار صرف ہم سے نہیں کہا گیا ہے کہ افضل عبادات میں سے ہے، اس طرح کے ملتے جلتی چیزیں گزشتہ نبیوں کے دور میں بھی رہی ہیں، اور گزشتہ جو ہے امتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ بہتری کے انتظار کریں، यानी बेहतरी के लिए कोशिश करते रहें, बेहतरी के लिए, तब्दीली के लिए, चेंजिंग्स के लिए, अच्छाई के लिए हमेशा तगोदो करें, जिद्दोजहद करते रहें और कभी नाउम्मीद ना हो जाएं। ये इस हत्ता यानी खुद इसी के लिए कहा, ला तयअसु मिन रूहिल्लाह, कहा कि आप खुदा की जो है, खुदा की तरफ से कि आपका मसला हल हो जाएगा, बलाखरा जो है बेहतरी आ जाएगी, इस सिलसिले में कभी मायूसी के शिकार ना हो जाएं कि भाई ये नहीं होगा, मसलन इतने साल हो गए नहीं हो गया, इतने साल हो गया नहीं हो गया, क्योंकि बुनियादी तौर पर इसने होना है, इन प्रिंसिपल ये पॉसिबल चीज में से है, बल्कि इसका वादा किया है खुदा ने, सो ये हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, एफर्ट्स को कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन रखना पड़ेगा। ये होता है, बास चीजें ऐसी होती हैं कि उसके लिए इंसान थोड़ी सी एफर्ट कर लेता है, प्रिपेयर हो जाती है वो चीज और ग्राउंड तैयार हो जाता है और वो जो टारगेट है वो बिल्कुल करीब आ जाता है। जाहिर है कि मसलन कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, एजुकेशन हासिल कर रहा है, मसलन फर्ज करें एक स्टूडेंट है वो कंप्यूटर साइंसेस में, फर्ज करें कि वो मास्टर करना चाह रहा है, खुद मालूम है मास्टर करने के लिए उसको कितनी एफर्ट करनी है और ये एफर्ट की ड्यूरेशन कितनी होगी, कितनी लेंथी है ये ड्यूरेशन और किस कितनी हद तक ये एफर्ट्स करनी है, एवरी डे कितना उसको टाइम स्पेंड करना है, कितना उसको मेहनत स्पेंड करनी है, कितनी उसको फाइनेंशियली स्पेंड करना है, कितना उसको फिजिकली भागदौड़ करना है, मेंटली कितनी प्रिपरेशन चाहिए, थ्योरेटिकली कितनी क्या क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए, प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए, क्या क्या हुनर, क्या क्या गुण, और उस सब चीजों को हासिल करने के लिए कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर उसको मेहनत करने की जरूरत है, भागदौड़ करने की जरूरत है, तकलीफ उठाने की जरूरत है, ये क्लियर है, ये टारगेट आराम से मिल गया। एक वक्त है कि एक नस्ल अगर मेहनत करती है तो तब्दीली आ जाती है। मिसाल के तौर पर कोई बड़ा मकसद है, बड़ा हदफ है दुनिया के अंदर, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी हमने, हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस वक्त खुश्की बढ़ रही है, हम बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए डैम बनाना चाह रहे हैं और डैम जितना बड़ा हम बनाना चाहते हैं, ये डैम जो है ना कम से कम हमें फर्ज करें 50 साल लगेंगे। दैट्स मीन 50 साल की मेहनत चाहिए, ये ड्यूरेशन है, लेंथ ही इतना है। ये मतलब ये है कि एक बच्चा जो पैदा हो जाएगा वो बच्चा 50 साल की उम्र में जब चला जाएगा तो हम अपना हदफ हासिल कर लेंगे, ये हमें पता है। मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट एक जनरेशन बन जाती है ना, एक पूरी जनरेशन का इंतजार है, 100 साल 50 साल। बाज औकात है कि कह रहे हैं नहीं, एक जनरेशन से काम नहीं चलने वाला है, दो जनरेशन, 3, 10, 20, 40, 50, लेकिन ये एक चेन की तरह काम रहना चाहिए। एक जनरेशन ने अपने हिस्से का काम किया था, उसने अगले को दे दिया था, उसने खुदा के अगर निजाम को अगर देखें, खुदा के निजाम में आपको इसी तरह के तरीके कार नजर आएगा। ये जो मेथडोलॉजी होगी या मैनेजमेंट जो साइंस नजर आएगी हमें, वो इस तरह नजर आएगी। मसलन खुदा ने जमीन में बंदे अपने भेजने के बाद नबियों को भेजा और 1,24,000 भेजा टाइम टू टाइम और डिफरेंट सेक्टर्स और एरियाज में, डिफरेंट टाइम्स में, और कंटिन्यूसली वो नबी अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। उसके बाद उसका आखिरी खातमुन नबीन आया, उसने अपनी जितनी कोशिश हो सकती थी कि, उसके बाद उनके नुमाइंदे शुरू हो गए और 11 उन नुमाइंदों ने तकरीबन ऑलमोस्ट 250 साल के करीब जो है मेहनत की इतनी सारी। उसके बाद भी देखा कि नहीं, अभी पूरा पूरी तरह टारगेट पूरा हासिल नहीं हुआ है। जब आप मसलन 1,24,000 पैगंबर आए थे कि अब दुनिया की जो जमीन की जो उम्र है, अब देखें साइंस कुछ कहती है वो कितने अरबों साल की है, खरबों साल की है, उसके पीछे नहीं जाते, मालूम होता है कि बहुत लेंथी है। तो अब देखें खुदाए अज़्ज़वजल ने पहले नुमाइंदे को जब भेजा था तो उस वक्त हदफ ये था कि इस नुमाइंदे ने जाकर जमीन में पूरा का पूरा मेरा निजाम कायम करना है, लेकिन देखा अभी प्रिपरेशन नहीं है, जमीन के अंदर इतनी तैयारी नहीं हो चुकी है लोगों में कि एक ऐसा सिस्टम कायम हो जाए, पूरी की पूरी दुनिया का कोई कूना, यमलउल अर्ज़ क़िस्तन वादला, कोई कूना बाकी ना रहे जमीन का, इस लेवल तक जाना है ना। जमीन सिर्फ नहीं है, सितारे, आसमान, सैारे सब कुछ हैं, मासूम के उसमें होते हैं, इसलिए मैं बार बार लफ्ज यूनिवर्सल और ग्लोबल का भी इस्तेमाल करता हूँ, उसकी बुनियादी वजह यह है। तो नहीं हो गया, देखा कि नहीं अभी प्रिपेयर ही नहीं है लोग, नीचे मेजोरिटी इधर से उधर हो रही है, और लोग अपनी अपनी दीन बनाने लग गए हैं, लोगों ने अपने अपने चीजें क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं। आस्ता आस्ता करते 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 खातमुन नबीन तक पहुंचा। खातमुन नबी के दौर में भी देखा कि नहीं, ये कंप्लीट अभी नहीं हो गया पूरा मामला। खातमुन आखिरी दीन आ चुका है, आखिरी सिस्टम आ चुका है, खुदा की तालीमात भी ग्रेजुअली आ रही थी और अपने कमालो तमाम की लेवल तक वो खुदा की नियमतें पहुंची हैं। पहुंचने के बाद खुदा ने कहा भाई अब भी अब 11 मासूमीन आ गए, तकरीबन 250 साल के आसपास इन्होंने अपनी कोशिश की, एफर्ट की, देखा लोग अब भी नहीं प्रिपरेशन हो रही है। एक इमाम को कहा अब फिर ये एक आखिरी जो खातमुल अवलिया है और खातमुल अवसिया है, वसी रसूल है, आखिरी वसी रसूल, आखिरी वली मासूम है, कहा कि इनको फिर ऐसा करें कि इन लोगों के दरमियान ही ना रखा जाए, इन लोगों के दरमियान रहे तो इस तरह रहे कि एक्सेस ना रहे इनमें, अब तक ये तैयार नहीं होते हैं, खुद को प्रिपेयर नहीं कर लेते हैं। उसके बाद फिर कहा कि ये इस वली को हम जाहिर करेंगे, जब प्रिपरेशन इनमें होगी, तैयारी होगी एक्सेप्ट करने के लिए, एक बड़ी तादाद में लोग या कम से कम एक जबरदस्त किस्म की जो है एक एक्सेप्टेशन और कबूलियत इनके अंदर आएगी और हालात होंगे, उस वक्त जो है इस वली को हम जाहिर कर देंगे। जाहिर कर देंगे मतलब क्योंकि दरमियान इन्हीं के दरमियान मौजूद हैं वो वली, और इन्हीं के दरमियान वो अपने आप को जाहिर करके सामने लाएंगे, फिलहाल जो है वो जाहिर नहीं करेंगे अपने आप को। ये जो है असल में चीज है। अब ये हमारे लिए वाजे हो गया, ये नुकता भी हमारे लिए क्लियर हो गया है। तो ये इंतजार खास और आम की जो तकसीम है वो इस अंदाज में है कि गुज़श्ता अंबियों के बारे में भी कहा गया था कि आप लोग इंतजार करें बेहतरी की, तब्दीली की, अच्छाई की, पुरउम्मीद रहें, कभी उम्मीद। अब देखें ये कितना लंबा सिलसिला है। तो ये जो इंतजार है ये जनरेशन टू जनरेशन है, नस्ल टू नस्ल, हमें नहीं पता है, हम इसके बारे में कुछ टाइम फ्रेम नहीं कर वो कर सकते। मुमकिन है मास्टर करने के लिए हमें पता है, बीए करने के लिए हमें पता है, पीएचडी करने के लिए हमें पता है, आयतुल्ला कब बनेगा हमें पता है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी ज्यादा लेंथी चीजें नहीं। लेकिन ये चीज जो है कि कब वो जहूर हो सकता होगा, हमें इतना पता है जब मतलूबा हद तक प्रिपरेशन होगी और हम तैयार होंगे उस वक्त जहूर होगा, लेकिन हम इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते हैं। लिहाजा एक जोहद मुसलसल चाहिए कंटिन्यूसली, और कोई निकम्मी जो जनरेशन होगी, नाअहल नालायक किस्म की जनरेशन होगी जो या मायूसी के शिकार हो जाए या फिर कहे यार छोड़ दें आदम के दौर से हो रहा है तो छोड़ दें, अभी हम तो कुछ नहीं करने वाले हैं, ये खतरा मौजूद है। बस इसी खतरे से भी हमें साथ में असरे गैबत के अंदर इस खतरे से हमें निकालना चाहते हैं, सुस्ती के खतरे से, गफलत के खतरे से, थक जाने के खतरे से, मायूस हो जाने के खतरे से, इससे निकालना चाहते हैं। जितनी रिवायात हैं आखिर उस जमान के बारे में और आखिरी जमाने में आने वाले खतरात के बारे में, आप उन रिवायात को उठाकर देखें तो कह रहे हैं कि लोग जो है ना प्योर दीन के ऊपर बैठ नहीं सकेंगे, दीनदारी, प्योर दीनदारी अपनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि प्योर दीनदारी में आसानियां रखी हैं खुदा ने, वो इस तो भी शरीयत इंसान अतिन वसाहला, कह रहे मैं बहुत ही आसान किस्म की एक शरीयत और दीन लेकर आया हूं आपके दरमियान, लेकिन लोग मुश्किल होंगे, लोग मुतासिर हो जाएंगे गैर इलाही, गैर खुदाई फिक्र से, गैर खुदाई सोच से, गैर विलाई सकाफत और कल्चर से, गैर विलाई आदाद और रसूमात से, गैर विलाई जो है पसंद और नापसंद से मुतासिर हो जाएंगे लोग, मुतासिर होकर वो उनको उनमें अच्छाई नजर आएगी, उनमें कोई कामयाबी नजर आएगी, उनमें कोई क्या कहते हैं पॉजिटिविटी नजर आएगी, तो उसकी तरफ चले जाएंगे, मासूम की और विलायत और इस्मत और खुदा और कुरान और दीन की तरफ नहीं। एक जंग है पूरी की। हम थ्योरिटिकल ये प्रॉब्लम आ सकती है नजरियाती तौर पर, फिक्री तौर पर, चलो थोड़ा और होजवी इस्तेमाल करते हैं अकीदती तौर पर, अकीदे के एतबार से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। खूब अकीदा खराब होगा तो अमल तो ज्यादातर अकीदे से ही वो करता है, असर लेता है, तो अमल तो मालूम है कि क्या हसर हशर नशर उसका हो सकता है उस सूरत में। तो ये खतरात असरे गैबत के अंदर जो मौजूद है वो ये खतरात हैं कि लोग उस खुदा के नुमाइंदे और वली और वली और मासूम और कुरान और उसके निजाम से लोग आस्ता आस्ता इस लेवल तक चले जाएं कि वाकिफियत ही खत्म हो जाए, आशनाई खत्म हो जाए, हत्ता एक जनरेशन ऐसी आने लग जाए कि उन्हें मालूम ही ना हो। तो कुछ चीजें हैं पता है, 12वें इमाम का नाम ये है, वो गायब है, जहूर हो जाएगा तो ऐसा होगा, बस इससे आगे कुछ पता ही नहीं है उसको, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं है उन लोगों के पास। दीगर इंफॉर्मेशन सारी होंगी डिटेल में माशाल्लाह से। मसलन उसको अगर हम उनमें से कोई एक पूछे कि जनाब आप ये बताएं ना, मलिका जो है, जो क्वीन अलजबित हैं, ये क्या है, तो पूरा शजरा शायद बयान करें। और अगर उनसे किसी और इस तरह की, जो उनके दरमियान ऐसे ऐसे हीरोज और ऐसे ऐसे मिसाली लोग सामने आएंगे, उन मिसाली लोगों के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी उनके पास। मसलन किसी क्रिकेटर आएगा जो मिसाली इंसान बनकर सामने, अगर रोल मॉडल बनकर, मसलन कोई एथलेटिक्स आएगा, कोई फुटबॉलर, मसलन कोई अदाकार, कोई मसलन ऐसी सेलिब्रिटी जिसको कहा जाता है आज, इस तरह के ऐसे ऐसे नए नए हीरोज सामने आएंगे, उनके बारे में वो बेहतरीन मारिफत होगी उनकी। लेकिन विलायत, इमामत, निजाम, खुदा, कुरान, इनके बारे में उनकी मालूमात बहुत सतही होंगी। जाहिर है फिर उनकी उनकी तौर तरीके ज्यादा अपनाएंगे वो। ये खतरात मौजूद हैं आखिर जमाने में, इन खतरात और आसीब और ये जो वायरसेस हैं खतरनाक किस्म के, जो वबाई शक्ल अख्तियार कर सकते हैं, ज्यादातर लोगों को जब लपेट में लेंगे तो वबाई शक्ल अख्तियार करना हो गया, तो उस सूरत में जो है कहा कि ये खतरात हैं, इससे हमें आगाह रखने के लिए। इसीलिए कहा कि देखें आखिर जमाने में वो लोग जो दीनदारी की तरफ जाएंगे, इमाम के वाकई मुंतजरीन होंगे, उनके लिए इंतजार करना आसान नहीं होगा, मुश्किलात होंगी, काफी डिफिकल्टीज को फील करेंगे। क्यों मुश्किलात हो? असल खैर पर अमल करते हुए मुश्किलात क्यों होनी चाहिए? क्या खैर कोई ऐसी चीज का नाम है कि जिसमें हमेशा मुश्किलात ही मुश्किलात रखा है खुदा ने? खुदा ने नहीं रखा मुश्किलात, हमने बनाया हुआ है। खैर तो आसानी है, मजहब में तो आसानियां हैं। खुदा अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं बहुत ही आसान मुलायम आपके लिए, आपकी फितरत की आवाज के मुताबिक, उसकी अपील और डिमांड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक खुदा का दीन लेकर आया, उस पर अमल करने से हम दुनिया आपकी आबाद होगी, हम आखिरत आपकी आबाद होगी। अब मसला हमारा ये है कि हम उस आबादी को आबादी नहीं समझते और उसको पूरी तरह कंप्लीट हम थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड नहीं करते, दूसरी तरफ प्रैक्टिकली हम उससे दूर हैं। नतीजे ये निकलता तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज बन जाती है वो। इसलिए इस सिचुएशन को सामने रखकर हमें बार बार जोर दिया कि देखें अब बेहतरीन इबादत, अफजल तरीन इबादत अपने इमाम का, अपने इमाम के जहूर के लिए मसरूफ अमल रहना है, तैयार रहना है, तैयारी करना है, और ये जो है इंतजार खास में से है, यानी वो मखसूस इंतजार, खुदा के नुमाइंदे और नूर खुदा का इंतजार, कि वह अशरकतिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, वो अपने रब के नूर के साथ जब आएगा तो जमीन और जमान को मुनव्वर करेगा, जमीन में नूरानियत आ जाएगी, मानवियत आ जाएगी, खैर और शर का मफहूम वाज हो जाएगा लोगों के लिए, खैर पर अमल करना आसान होगा, शर अंजाम देना डिफिकल्ट और मुश्किल हो जाएगा। कि लोग कहेंगे तू बड़ा बेवकूफ है, अपने आप को तकलीफ में डाल रहा है शर को अंजाम देने के लिए, क्योंकि इस तरह का माहौल पैदा करने के लिए, इस तरह की एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए आएंगे। कि खैर पर अमल करने वाला ऐसा लगेगा खैर पर अमल करना एक गिलास पानी पीने की तरह है मेरे लिए, शर करना मुश्किल है। आज सूरत हाल उसके बरक्स है, शर करना एक गिलास पानी पीने के बराबर है, खैर को अंजाम देना ऐसा है जैसे कि कांटों के ऊपर चलना है अंधेरी रात में। ये रिवायात के अल्फाज हैं, अंधेरी रात हो कुछ हाथ को सजाई न देता हो, कांटे जमीन पर पड़े हों और खाली हाथों से कहा जाए कि चुन लो इन कांटों को, जाहिर है कि चुनते वक्त हाथों का हशर क्या होगा। या कहा कि जलता हुआ धहकता हुआ कोयला अपनी हथेली पे रख के बैठो, ये कहा दीनदारी, दीनदार बनना इतना मुश्किल काम होगा, इमाम के मुंतजिर रहना इतना डिफिकल्ट काम हो जाएगा। और इसको समझा जा सकता है आज की हालात के हवाले से। और इसी आ जाते हैं अब ये इबादत का, और यानी हरकत, अमल, कोशिश, मेहनत करना, मुशक्कत उठाना, तकलीफ सहना, यहां तक कि अंधेरी रात में कांटे चुनने के बराबर हो, हाथ में देखते हुए कोयले को रखने के बराबर हो, ये क्या है? असर गैबत में अफजल तरीन इबादात है, इबादात में से हैं। मुंतजरीन इमाम जमाना इस लेवल तक जाने वाले लोग हैं, बस ये इनका इंतजार खास है, ये मुंतजरीन भी खास हैं। ये हो नहीं सकता है कि इंतजार खास हो जाए, मुंतजिर जो उसका इंतजार कर रहा है वो खास ना हो जाए, क्योंकि अगर इंतजार खास है तो मुंतजिर भी खास है। अगर नमाज मलकूत तक रसाई हासिल करती है, मतलब वो बंदा भी मलकूत तक रसाई हासिल कर लेता है। अगर किसी नमाजी की नमाज कबूल हो जाती है, मतलब बंदा भी कबूल हो चुका है खुदा के नजदीक। तो ये मालूम हुआ कि बस अफजल आमाल उम्मती इंतजारुल फराज, मेरी उम्मत के बेहतरीन अमल जो है मेरे वली के जहूर का इंतजार करना है। बस ये है कि सिर्फ उनका इंतजार अफजल नहीं है, बल्कि वो खुद भी अफजल है, जो इबादत कर रहा है वो भी अफजल है। जो एक पहलू है वो ये है कि ये जो इंतजार है, ये इसको अगर हम एकेडमिक थोड़ी सी या टेक्निकल जबान में आ जाएं समझने के लिए, तो एक मर्तबा इसका एक पहलू है जाती या पर्सनल या शख्सी है, दूसरा जो है वो इज्तिमाई हवाले से है। जाती और इज्तिमाई, जाती हवाले से मिसाल के तौर पर अकीदे की दुरुस्तगी, आइडियोलॉजिकली क्लियर हो, क्लियर आइडिया हो, प्योर हो, खालिस हो, ऐसा ना हो कि इमाम और मासूम और कुरान के फरमान के नाम पर कोई और चीज में उसमें मिलावट कर लूं, गलत तरीके से जो है किसी चीज को ले लूं और मिक्सचर बना के समझूं कि अच्छा ये यही चीज है, यही दीन है। ये ना हो, खालिस दीन हो, अच्छी शिनाख्त रखते हों। जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि कोई इंसान किसी सेक्शन के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहा हो और बीच में और चीजें मिक्सअप कर दे उसमें एक कॉकटेल की तरह, वो फिर जाहिर है उसको वो चीज नहीं मिलेगी, वो महारत उसको हासिल नहीं होगी, नतीजा भी नहीं मिलेगा उसको, रिजल्ट भी डिफरेंट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं केमिस्ट्री के अंदर फर्ज करें मुझे पीएचडी करनी है, लेकिन मैं स्विक्स की किताब साथ में मैंने डाल दिया है, आधी केमिस्ट्री और आधी स्विक्स में डाल रहा हूँ, जाहिर है कि नतीजा उसका क्या निकलेगा। वो बायोलॉजी में पीएचडी कर रहा हो और उसी दौरान बायोलॉजी के की पीएचडी के दौरान जो है ना फर्ज करें कि वो आदमी साथ साथ एक सोशियोलॉजी भी डाल दे उसके अंदर, वो बायोलॉजी कुजा सोशियोलॉजी कुजा भाई। तो प्योर दीन होना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट उसके बगैर नहीं आता है। मसला ये है कि लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है ये वो, नहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले ही बुनियाद ही गलत थी, मिक्सचर किया हुआ था, आधा जो है किसी और जगह से उठाया है, आधे आपने कुरान और अहले बैत और इमाम जमाना की तालीमात से उठा लिया है। तो ये तो ऐसे तो मामला हल नहीं हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आगे जो रिजल्ट आ जाए वो एक प्योर खालिस रिजल्ट आ जाए। हम थ्योरिटिकली तौर पर कहें कि भाई मेरा अकीदा भी बिल्कुल खालिस है, लिहाजा मेरा अमल खालिस, खुद नहीं दोनों खाली ना खालिस है। लिहाजा जाती तौर पर जब हम तैयारी कहते हैं, नफसियाती तैयारी है उसमें, नजरियाती तैयारी उसके अंदर मौजूद है। नजरियाती तौर पर यही है कि भाई दुरुस्त पहचान हमारी हो दीन के मामले में, इमामत के मामले में, विलायत के मामले में, दीनी तालीमात के मामले में सही तरीके से हम पहचान लें उसको। ये सबसे पहले बुनियादी उसमें फराइज में से हमारे बनते हैं। इसीलिए आप देखते हैं मैंने पहले इसके ऊपर काफी पहलू से मुख्तलिफ डिफरेंट जावियों से डिफरेंट टाइम स्पेस पे डिस्कस किया है। हम एकेडमिकली, हम टेक्निकली और हम वाज व नसीहत और हम मोटिवेशन स्पीचेस के तौर पर, वो ये इसीलिए जो मशहूर हदीस है कि फरमाया जो इमाम की मारिफत के बगैर इस दुनिया से चला जाता है वो गैर मुसलमान मरा है असल में। दुनिया में बेशक मुसलमान था, ठीक है, तौर तरीके उठना बैठना दीगर लोगों के साथ मुसलमान के इनवान से था, मरने के बाद क्योंकि हकीकत सामने आती है, हकीकत में तो वो मुसलमान ही नहीं था, इसलिए कि इमाम की मारिफत नहीं रखता था। मन मात वलम यारिफ इमाम जमानी ही मातमी ततन जाहिलिया, मतलब क्या, वैसे तो अकीदा रखता था वो, बारे इमाम पर अकीदा रखता था, शिया इतना अशरिया था। अब ये कैसे जाहिल की मौत मरेगा, जाहिल यानी गैर मुसलमान, गैर मुसलमान कैसे मर गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहा उसने, इसलिए कि देखें ये उसने कहा था, उसकी दुनिया में तो ये ठीक था, जब उसने कलिमा पढ़ लिया था या कलिमा गो मुसलमान के घर में पैदा हुआ था तो ठीक था, वो तो दुनिया के अतबार से ठीक था, आप उसके साथ खाएं पिए, उठे बैठे, रिश्ता रखें, फराइज अंजाम दें, हुकूक की रियायत करें, शादी ब्याह कर लें, वो ठीक है। अब आखिरत का मामला ये है, मरने के बाद मामला ये है कि हकायक खुलती हैं, वहां पर असल चीज सामने आती है, हम अकीदे की, हम अमल की। तो उस वक्त पता चला कि ये बंदा जो है ना इधर प्योर था ना उधर प्योर था, वो इमाम को बेनवा ने एक इमाम मानता था, लेकिन निजाम इमामत पर उसका भरोसा नहीं था। निजाम के बारे में कहता था कि लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम दुनिया में कामयाब तरीन है, फला जो मुल्क में मेरी पॉलिटिकल पार्टी है वो मेरी नजात दहंदा है। वो ऐसे तो उससे कहते तो कहता नहीं, इन अल हुसैन मिसबाह अल हुदा व सफीनत नजात, लेकिन प्रैक्टिकल में जाता था तो कहते नहीं, वो जो फला पॉलिटिकल पार्टी है, वो जो फला मेरा लीडर है, वही मेरा नजात दहंदा है, मेरी मुश्किल वो हल कर सकता है, डॉलर यूरो मेरी मुश्किल हल कर सकते हैं, फला इल्मी डिग्री मेरी मुश्किल हल कर सकती है, वो हलाल मुश्किल भी हैं और वही नजात की कश्ती भी है। मौला मुश्किल कुशा तो मौला अली को मानता था, लेकिन वो कहता था ऐसा, प्रैक्टिकली तो उसके मुश्किल कुशा बहुत सारे और चीजें बनी हुई थी। अब वो हकायक तो वहां खुल जाएंगे ना सामने, तो हकीकतें खुलेंगी तो पता चलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह में कोई दम खम नहीं है, लिहाजा कहेंगे मन मात वलम यारिफ इमाम जमान ही मातमी तिन जाहिलिया, बात खत्म हो गई। सिंपल सी चीजें हैं। तो जाती तैयारी में पहली चीज खालिस वो बात जो खुदा ने कही है, खालिस वो बात जो पैगंबर खुदा ने बयान किया है, खुदा की बात को पहुंचाया है, खालिस वो बात जो इमाम मासूम फरमा रहे हैं, प्योर किस्म की चीज हो, मिलावटें नहीं आ जाए उसके अंदर, तब क्या है एक जबरदस्त किस्म का अकीदती तौर पर तैयार है बंदा, प्योर बिल्कुल तैयार है। अब फर्ज करें, मैं एक मिसाल देता हूं, इस्लामी शरी हुदूद व ताजीरात के, या मुझे यार इस्लाम बहुत पसंद है, दीन बहुत एक्सेप्ट है मेरे लिए, काबिले कबूल है, मैं मानता हूं कि ये चोर का हाथ काटना, ओ जिनाए मोहसिना, शादीशुदा मर्द या औरत अगर खुदा ना करे बदफेली के शिकार हो जाए तो उनको संसार करना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर आप फकी उस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं, या फिलहाल वो जो इस्लाम का कानून है, फला जो कानून है वो जरा बस मालूम मालूम हुआ कि एक्सेप्ट नहीं किया बंदे ने, पता चला बस। एक होता है क्वेश्चन होना, एक होता है एतराज करके कबूल न करना, ये दो अलग हालतें हैं। मसलन इमाम अली अलैहि सलाम मुकद्दस मोहतरम मौला मुश्किल कुशा कबूल है, लेकिन इमाम अली अलैहि सलाम का जो निज़ाम है, सिस्टम है, सियासी इज्तिमाई तरबियती इल्मी तालीमी, नहीं वो नहीं चलेगा, ये कबूल नहीं है। तो पता चला कि नाकिस से चीजें, तो बस जाती तैयार क्यों क्यों, ये हम इस पर इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? अवलन तो यही हकीकत है, जोर लगाने की बात ही नहीं, चले इस तरह बहस नहीं करते तो दूसरे तरीके से बहस करते। दूसरा ये कि इमाम जब तशरीफ लाएंगे, जहूर होगा, तो जहूर के अंदर क्या निजाम आएगा? लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, लिबरल एजुकेशन सिस्टम, क्या आएगा, कौन सा निजाम? यही जो इक्तसादी निजाम, यही तरबियती, इसी किस्म के स्कूल का निजाम, इसी तरह के कॉलेजेस का निजाम, फिजिक्स और बायोलॉजी इसी तरह जो है डार्विन और फ्रॉयड और उनके नजरियात पर पढ़ाई जाएगी, साइकाट्री और ये सारी चीजें, साइकोलॉजी और ये सारी चीजें इसी फ्रॉयड के नजरिए पर पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी और फिजिक्स और ये जो बाकी चीजें हैं वो इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा कि अभी तक डार्विनिज्म ही चल रही होगी, स्टिल की स्टिल अभी भी जो है हमारे पास जो क्या कहते हैं नजरिया इर्तका और वो चीजें अभी भी उसी तरह चलती रहेंगी। सवाल ये है, ये कुछ मसलन ऐसी नॉर्मल किस्म की चीज नहीं है कि आदमी कहे जी मुझे इमाम कबूल, इमामत कबूल नहीं है, इमामत यानी निजाम है, इमामत वली कबूल, विलायत कबूल नहीं है, इसलिए कि विलायत निजाम है, विलायत ये मतलब थ्योरेटिकली क्लियर नहीं है। बस एक जो जरूरी है, जाती तौर पर तैयार होना, मतलब जाती तौर पर प्योर दीन को लेना, सही अकीदा, सही दुरुस्त तरीके से हर हवाले से क्लियर होना चाहिए बंदे को, खुद कम से कम क्लियर हो जाए। दूसरी तरफ मुमकिन है एज ए थ्योरेटिकली बहुत जबरदस्त किस्म का एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, नफसियाती तौर पर या जो है उसकी जो मिजाजी तौर पर मायूस किस्म का इंसान है, मायूसी का शिकार है, कह रहे यार सब कुछ ठीक है लेकिन कब जुहूर करेगा इमाम, वो इतना टाइम गुजर गया है, वो इतना वक्त गुजर गया, नहीं आया इमाम, नहीं आया, कब आएगा भाई, वो इतनी मुश्किल हैं, वो इतनी जंगें हो रही हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, वो यमन को देखो, उस सीरिया में देखो, वो अराक को देखो, अफगानिस्तान कभी अमन नहीं हो गया, उधर पाकिस्तान में देखो कोई तब्दीली नहीं आ रही, उधर देखो कोई, और नाइजेरिया में देखो मसलन शयातीन मोड़ करें, ये मायूसी, ये जो आदमी ये जाती तौर पर भी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं हो सका, मेरा ये गोल था, मेरा वो ये था, ये मायूसी का शिकार होना कुफर है। इसीलिए देखें अजीब है, एक साइकोलॉजिकल जो फिनोमेना है उसको इस्लाम ने कुफर करार दिया। मतलब क्या, खुदा की रहमत से मायूस होना, पॉजिटिविटी से मायूस होना, वली या खुदा के जहूर से मायूस होना, बेहतरी की उम्मीद ना रखना, कहा यह कुफर है। अगर तुम काफर हो गए हो, नहीं 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, ना बाबा वो ठीक है तुम्हारी दुनिया में ला इलाहा, तुम इन रियल तुम काफर हो गए इन रियल, मायूस हो रहे हो, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, खुदा ने नहीं कहा था। थ्योरेटिकली बहुत जबरदस्त दानिश्वर हो, बहुत जबरदस्त आलिम हो, फकी हो, प्रैक्टिकली और नफसियाती तौर पर तुम मायूस इंसान हो, तुम कयादत कैसे करोगे। हमारे आइमा हर तरफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम का यह फरमान है कुरान मजीद को लेकर, इसी के अंदर से हमें बहुत कुछ मैसेज मिलता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम फरमाते हैं, कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक भी इंसान न हो, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला हूं। अब अंदाजा लगा ले पूरी दुनिया में कोई ना हो सिवाय एक आदमी के। बाज ये फिल्में और कार्टून्स और ड्रामे बनाते हैं जिसमें दिखाते हैं कि पूरी कायनात में इंसान खत्म हो चुके हैं किसी वायरस की आने की वजह से, या किसी ऐसे केमिकल उसकी वजह से फैल चुके हैं, या कयामत आ चुके, एंड ऑफ द टाइम हो चुका है, जो एंड ऑफ द टाइम के ऊपर फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं चंद अफराद रह गए हैं, या कहें पर एक आदमी अकेला किसी जजीरे में फंसा हुआ है, अकेला है, देखो उसकी कैफियत क्या होती है, पागल हो जाता है वो, अजीब व गरीब किस्म की हालत बनती है उसकी। इमाम फरमाते हैं पूरी दुनिया में कोई ना हो सिवाय मुझ अकेले के, वल कुरान माई लस्तौहशतु, कह रहे हैं कि अगर कुरान मजीद मेरे साथ हो तो खुदा की कसम में एक मिनट के लिए वहशत और खौफ और ये चीजें महसूस नहीं करूंगा। यह अहमियत कुरान बतला रहे हैं, मतलब कि इस लेवल तक मायूस ना होना कि इंसान मुकम्मल अंधेरे में है, कोई उम्मीद, मसलन हजरत यूसुफ कुएं में डाल दिया है, बच्चा है जाहिरी तौर पर, फिजिकली गहरा कुआं है, फेंक के चले गए हैं, कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए ना, खुद को कौन आएगा यार, बियाबान में आबादी से हट कर एक जगह में मुझे कुएं में फेंक दिया है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर मायूस नहीं होता, वहां से खुदा निकाल लेता है, उस कुएं के गहरे कुएं के अंदर से खुदा बताल निकालता है। लिहाजा एक मुंतजिर इमाम जमाना, एक इंतजार जैसी अफजल इबादत को अंजाम देने वाला, हम थ्योरेटिकली क्लियर है, दूसरी तरफ कभी मायूस नहीं होता, बदतरीन हालात में भी मायूसी का शिकार नहीं होता। कहते यार दरवाजा खुलता है, रोशनी आ जाती है, बलाकरा कहें ना कहें से कोई वो हो जाता है, खुदा के साथ हूं, खुदा के रास्ते में हूं, सही रास्ते में हूं, दुरुस्त रास्ते में हूं, अकलानियत के द्वार से, अखलाक के द्वार से, तो मुझे मायूस नहीं होना चाहिए। हजार दरवाजे मुझ पर बंद किए गए हैं, एक रोशनदान मेरे लिए खुल जाएगी, वही एक रोशनदान ही मुझे जरूरत थी, उसी एक रोशनदान के जरिए से ही सारा कुछ हल हो जाएगा। ये उम्मीद रखना कि फरमाया कि खुदा ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, खुदा की रहमत से कभी मायूस ना होना हरगिज और हरगिज, और ये रहमत। एक मुंतजिर असर गैबत इमाम जमाना में कभी भी बुरे तरीन हालात में मायूसी का शिकार नहीं होता। एक जिंदा मिसाल गजा है, फलस्तीन के अंदर हर तरफ से मुहासरे में है, देखो आज से नहीं 14-15 साल से ज्यादा हो गए जमीन से मुहासरे में है, बल्कि उनके बेचारों को तो बाड़े लगा के, दीवारें लगा के, एक नहीं दो दो तीन तीन बाड़े लगाई हुई हैं, मरहलावार फजा पे कोई इख्तियार नहीं है, दरिया में कोई इख्तियार नहीं, वो क्या करेंगे, वो गजा उसके बावजूद नाउमीद नहीं है, उस गजा से बाहर रहने वाले लोग भी नाउमीद नहीं है, रेजिस्टेंस ब्लॉक या मुजाहमती लोग या वो जो हकीकी मुंतजरीन है, वो अंदर बैठे हुए लोगों तक रसाई करते हैं, अंदर वाले बाहर तक रसाई करते हैं किसी न किसी तरीके से, मायूसी के शिकार नहीं है, और वो अंदर बैठे हुए वाकयान यानी हजार गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर दुनियावी एतबार से दुश्मन का मुकाबला करते हैं, और मुकाबला कब से कर रहे हैं बेचारे, 1948 से पहले से मुकाबला कर रहे हैं, अभी जाके दुश्मन को उन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं नाकूं चने चबवा दिया है, इतने साल के बाद नाउमीद नाउमीद हो जाता तो क्या होते, उसी वक्त सिलेंडर करके कहते हैं बाबा ठीक है हम भी आपके लाइन में आ जाते हैं, आपको कबूल कर लेते हैं, हम रोटी पानी का मसला हमारा हल करो। ये अजीब है, वो गजा के पास ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई और चीज है, दुश्मन के रास्ते से आता है कि सारा का सारा। ये आज की जिंदा मिसाल है। क्यों? ये बेचारे मायूसी के शिकार हो गए थे ना, पेलो और ये जो महमूद अब्बास और इससे पहले यासिर अरफात, और ये इमाम खुमैनी जैसी एक ऐसी शख्सियत आया जो हकीकी मुंतजिर इमाम जमाना था। इन्होंने इनको उम्मीद दिलाई, इनको रास्ता भी बताया। हाँ, रास्ता ये है, इस्तकामत दिखाओ। तुम उस हजरत यूसुफ पर ईमान नहीं रखते जो या को तनहा बच्चा था और कुएं में डाला था और वो मायूस नहीं हुआ? तुम उस यूसुफ पर ईमान नहीं रखते जिसके ऊपर उस जमाने की सबसे ताकतवर तरीन रियासत की सुतून समझी जाने वाली खातून ने तोहमत का इल्जाम लगाया, झूठा इल्जाम लगाया, और उसको जेल में डाल दिया जहां से कोई उम्मीद नहीं थी कि उसको निकाला जाए। खुदा ने उसको निकाल दिया और अजीज मिसर बना दिया। तुम्हें उस खुदा पर भरोसा नहीं है? हम सब के लिए भी है, जाती जिंदगी में भी, और एक मुंतजिर इमाम जमाना कभी मायूसी का शिकार, बहुत जरूरी है ये। बहुत बड़े बड़े दानिश्वर, फिलोसोफर, यानी थ्योरिसियंस, वो जो है मायूसी का शिकार हो जाते हैं और औंधे मुंह गिर जाते हैं। मसलन बहुत से लोगों को हम सोचते हैं, यार कब होगा जुहूर इमाम का, या इमाम जमाना जुहूर करो फला। ये क्या, ठीक है, ये इश्तियाक, ये शोक, ये इश्क, ये जज्बा होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर मायूसी का अंसुर ना हो, मुबारजे का अंसुर हो, इस्तकामत का अंसुर हो, डट जाने का अंसुर हो। जब अकीदा सही है, अमल सही है, थ्योरेटिकली क्लियर हो, मजबूत और प्योर अकीदा रखते हो, तो ये उम्मीद कभी हाथ से नहीं जाती। ये जाती तौर पर बहुत जरूरी है। अब ये चीजें हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हमें जराए दिए हैं कि भाई आप कैसे जो है ना मजबूत कर सकते हो अपनी उम्मीद के अंसुर को, और अपने, मैंने अर्ज किया कि अकीदा जो है प्योर ले लें, खालिस ले लें। आज के दौर में सही वो सालिम आलिम से ले लें, सही वो सालिम किताब से ले लें, सही वो सालिम मुश्तहिद से ले लें, सही वो सालिम जो दुरुस्त तरीके से खुद समझा हो, समझा सकता हो। जाहिर लेवल है, उस्ताद और टीचर और उसकी आलिम की एक लेवल होता है, कोई आलिम किसी लेवल का, कोई बलाखरा उस लेवल तक वो आलिम बेहतर समझा सकता है, उस लेवल तक उससे आगे का आलिम समझा सकता है, उससे आगे का आलिम। किताब भी इसी तरह है, इस्लाम के नाम पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, मैं नाम नहीं लेता। एक बज़ाहिर मुज्तहिद कहलाता है, यही जो बरतानवी शिया से वाबस्ता है, उसके बारे में उसने 1,000 किताबें लिखी। मैंने कहा वो किताबें उठा के मैंने देखी, वो बच्चों की कहानियां हैं उनमें से ज्यादातर, माजरत के साथ 90% ऐसी बच्चों की कहानी। मैंने कहा ठीक है दे दो, ये आम लोगों के काम आएंगी, किताब तो नहीं है, एक आलिम की किताब तो नहीं है, वो मुज्तहिद कहलाता है जो। तो ये
मेरे ख्याल में दोबारा से आखा साहब का इंटरनेट मसला कर रहा है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। आप सबके जहनों में अगर क्वेश्चंस हैं तो एंड ऑफ द सेशन अभी जो शायद 6-7 मिनट के बाद हो आप पूछ सकते हैं।
बहुत माजरत, मेरे पास इंटरनेट रूटर रीस्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए मैं पहले से कुछ और इंतजाम करूंगा। जी, हम अर्ज कर रहे थे दूसरा जो एक और पहलू है जो जाती तैयारी के नफसियाती हिस्से से, क्योंकि आज की जो मॉडर्न इस्तलाहात हैं उस इनवान से मैं कह रहा हूँ, या अखलाकी एतबार से वो जो है उससे ताल्लुक रखता है। वो ये है कि एक इमाम जमाना का मुंतजिर कभी भी करंट सिचुएशन से खुश नहीं होता है। करंट सिचुएशन जिसमें वो बैठा हुआ है, यानी करंट सिचुएशन कौन सी, जो जो उसकी सोसाइटी में इस वक्त रूल कर रही है या सोसाइटी के ऊपर मौजूद है, दूसरे अल्फाज में करंट कल्चर से राजी नहीं हो, जो करंट सिस्टम है उससे राजी नहीं है, कभी राजी नहीं है। ठीक है, उसका हिस्सा है, उसी के अंदर है, मजबूरी है उसकी, ऑप्शन नहीं उसके पास, लेकिन कभी खुश नहीं है। खुश नहीं, और हमेशा चाहता है चेंजिंग आ जाए, तब्दीली आ जाए, बेहतरी हो जाए इसके अंदर। ये क्या सिस्टम है यार, ये किस तरह का निजाम बना हुआ है, ये किस तरह का तरीके का, ये कैसी सोसाइटी बनी हुई है जिसमें खुश नहीं है वो। ये कहता है कि जैसे हमारा कहता है आइडियल जगह मैंने देखी, मलिक रियाज ने जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई है वो क्या माहौल दिया हुआ है जी, पानी बिजली गैस सहूलतें हर चीज मौजूद है, एजुकेशन का क्या सिस्टम, हेल्थ का कितना जबरदस्त निजाम, अंदर जो रूल रेगुलेशन है वो कितने अच्छे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे फॉर एग्जाम्पल करेंट सिचुएशन, कहते हैं मेरे ये इमाम का निजाम नहीं आया, मैं खुश नहीं हूं इससे, मजबूर हूं इसका हिस्सा हूं, मैं राजी नहीं हूं इससे। उम्मीद रखना साथ में, कोशिश भी कर लेना बेहतरी के लिए, तब्दीली के लिए, चेंजिंग्स के लिए। ये एक दूसरी कैफियत है साइकोलॉजिकल की, भाई मैं करेंट सिचुएशन से खुश नहीं हूं। दुनिया के ऊपर क्या अक्वाम मुत्तहिदा बना लिया सबने, भाई दुनिया के अंदर नजात दहंदा अक्वाम मुत्तहिदा आ गया, दुनिया के तमाम अक्वाम का मुश्तरका प्लेटफॉर्म, सारे इश्यूज यहां से हल होंगे, इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और सेक्शन बनाए गए हैं, और लोगों के लिए एक सिविलाइज माशरा बनाने की कोशिश की जाएगी। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि सही नहीं बनाया। हाँ ठीक है, मेरा इमाम का जो निजाम है उससे लिंक तो करता है ये चीज, लेकिन तुम लोग इसके जो अहदाफ है, जिस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हो, मैं नहीं खुश हूं, ये बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत जरूरी, इसी के अंदर एक छोटी सी ऐड कर दूं, और आपका वक्त भी एंड हो रहा है, और इंशाल्लाह हम अगले उसमें मजीद इसके दूसरे सेक्शंस में जाएं। एक और जो छोटी सा इशारा कर दूं, ये है कि फर्ज करें कि एक आदमी किसी बड़ी किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, और उसका जो है सीओ बन गया फर्ज करें, या उससे भी ऊपर की कोई पोजीशन आ गई, शेयर्स वेयर्स भी उसको दे दिए हैं कंपनी ने फॉर एग्जांपल। अब वो उससे खुश है, लेकिन जाहिर है कि उसकी जो ऑनरशिप है वो मशकूक है, मसलन इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसकी मजबूरी बनी है कि वो उसमें जॉब कर रहा है। अगर एक पक्का सच्चा मोमिन होगा तो वो बादिल नाखास्ता कुड़ते हुए अंदर से तकलीफ महसूस करते हुए वो काम करेगा, कहेगा चारा नहीं है, क्या करूं इसके अलावा, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, सीओ बन गया हूं मैं राजी नहीं हूं, कंपनी के शेयर्स भी का होल्डर भी बन गया हूं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि ये वो चीज नहीं है जो मेरा इमाम चाहता है। जब जुहूर करेंगे तो ये इस तरह नहीं बनाएंगे, इमाम का जुहूर होगा तो ये कंपनी ऐसे नहीं होगी, मेरी पोजीशन ऐसे नहीं होगी, निजाम ऐसे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूं, ये वो कैफियत, बहुत मुश्किल काम है, मालूम है कि ये मुश्किल काम है। इस कैफियत के साथ आदमी, एक मुंतजिर इमाम जमाना इस कैफियत के साथ जिंदगी गुजारता है, करंट सिचुएशन से खुश नहीं है, बेहतरी के लिए पुरुमीद है, और उसके लिए हमेशा कोशिश करता है, स्ट्रगल कर रहा होता है। ये जो है एक मुंतजिर है इमाम जमाना के फराइज में से भी है, और उसकी जो कैफियत है, जो सिचुएशन है, वो इस तरह की होती है। एक हदीस कोट किया करता हूं और आपकी जहमत तमाम, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक सलवातुल्लाहि वसलामहु अलैहि के बहुत ही पॉपुलर, नामवर, मशहूर और बहुत ही अहम तरीन सहाबियों में से अबू बसीर हैं। अबू बसीर इमाम की खिदमत में बैठे हुए थे, तो इमाम ने अबू बसीर से फरमाया, या अबा बसीर व अंत मिम्मन युरीदुद्दुनिया, दुनिया कह रहा है कि तुम कहें उन अफराद में से, तो वैसे ही यानी समझाने के लिए कहा, उनमें से नहीं है, इन अफराद में से तो नहीं हो जो इस मौजूदा जो दुनिया की सिचुएशन है इससे बड़े खुश और राजी हैं और चाहते हैं, पसंद करने लग गए हैं। कह रहा मैं तो बहुत खुश हूं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली है, अच्छी औरत से शादी की है, बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने बेटा बेटी सब दिए हैं, पोजिशन बहुत अच्छी है, घर बहुत अच्छा लिया है, गाड़ी वाड़ी है जी, आगे पीछे सब कुछ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा खुश हूँ जी, मैं तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ इस मामले में, यानी खुदा की नियमतों का शुक्र अदा करना एक पहलू है, कि ये सारा जो सिस्टम है, निजाम है, इस मुल्क का निजाम है, इस माशरे में हाकिम निजाम है, एजुकेशन निजाम है, इकोनॉमिकल निजाम है, दुनिया के अंदर जो ग्लोबल सिस्टम है, सबसे मैं तो बड़ा खुश हूं जी। ये कह रहे कि मिम्मन अंत मिम्मन युरीदुद्दुनिया, तुम तो बड़े कह रहे हैं कि तुम उनमें से तो नहीं हो ना, ظاہر ہے کہ ابو بصیر کہاں ہو سکتے ہیں، لیکن امام اس انداز میں بیان کر رہے ہیں مسئلے کو. پھر امام فرماتے ہیں من عرف هذا الامر فقد فرج عنه لانتظاره، یعنی کہا کہ جو صاحب امر کو یعنی جو اس نورانی کام کو کی معرفت رکھتا ہے، یعنی صاحب امر، صاحب الاثر، صاحب الامر یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت رکھتا ہے اس کے نظام کا کہ کائنات اس کی منتظر ہے، فقط فرج عنہ لانتظار، تو وہ ہماری زبان میں سادہ ترجمہ کریں تو کہہ سکتے ہیں وہ حقیقی منتظر ہے، وہ خوش نہیں ہے اس دنیا سے. ممن یرید الدنیا، یہ نہیں خوش اس دنیا سے، اس سسٹم سے حصہ ہونے کے باوجود خوش نہیں ہے، مجبوری ہے اس کی. لیکن جیسے وہ علی ابن یقطین تھا، ظالم حکومت کا حصہ تھا حکمت اور ضرورت کی وجہ سے، لیکن خوش نہیں تھا، ظاہر ہے خوش تو نہیں ہوتا ہوا میں وزیر بن گیا ہوں. جیسے امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی قبول کی، خوشی سے قبول کی تھی. امام رضا علیہ السلام روزانہ کہہ رہے تھے مصلحات کی وجہ سے قبول کیا ہے، قوم میں تو خوش نہیں. وہ امام ہے، وہ امام ہے، کل شیء ہے ولی، یہ کل شیء ہے. وہ ولی عہدی کیا دے دیں گے اس کو، ولی عہدی کی حیثیت کیا ہے، اس کا عہدے کی حیثیت کیا ہے، وہ جوتی سے بھی بدتر ہے. امام و کلو شیء ہے، ولی و کلو شیء ہے. امام رضا علیہ السلام خوش ہو کے پھاگر گئے، میں تو بہت خوش ہوں جی مجھے ولی عہد بنائے، نعوذ باللہ ونستجیر باللہ. ہمارے لیے بھی یعنی سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. کہا انت ممن یرید الدنیا، من نہیں، من عرف هذا الامر فقط فرج عنه الانتظار. تو لہذا خلاصہ معلوم ہوا کہ بھائی عصر غیبت میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ احادیث و روایات نے بیان کیا ہے کہ انتظار امام زمانہ سب سے بڑی عبادت. انتظار کا مطلب آرام نہیں بلکہ مصروف رہنا، تیاری کرنا، دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے. انتظار عام اور خاص کے معنی میں ہے، خاص سے مراد یہی امام زمانہ کا انتظار ہے، خدا کی رحمت کا منتظر رہنا، خدا کے اوپر بھروسہ رکھنا، امید رکھنا، ذاتی طور پر بھی تیار ہونا ہے اور اپنی سوسائٹی اور دوسروں کو بھی اس حوالے سے آگاہی دینی ہے، تیار کروانا ہے، تیار کرنا ہے. جیسے بچوں کو ہم سکول کے لیے تیار کراتے ہیں، کسی اور چیز کے لیے تیار کراتے ہیں، اسی طرح دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے، خود بھی تیار ہونا ہے. فرق یہ ہے یہاں پہلے خود تیار ہونا ہے پھر دوسروں کو تیار کرنا ہے. عام طور پر ہم والدین پہلے بچوں کو تیار کرتے ہیں پھر خود تیار ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہلے خود تیار ہونا ہے. اسے جہاز میں کہتے ہیں نا کہ پہلے اپنا آپ کیا کہتے ہیں لائف جیکٹ پہن لیں پھر دوسروں کو پہنائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ خود نہ پہنے ہوں تو خود بھی نہ بچ سکیں دوسروں کو بھی نہ بچا سکیں. یہاں پر بھی ایسا پہلے خود تیاری کر لینا پھر دوسروں کو بھی تیار کرنے میں ہاتھ بٹانا ہے. اور ذاتی تیاری سے مراد جو ہے ہم عقیدتی تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پر ہے کہ ہمیں ایسے انٹلیکچوئل نہیں بننا جو اس امام کے امام زمانہ کے نظام سے ہٹ کر کوئی چیز ہو، بلکہ پیور خالص دین کو سمجھنا ہے. اور نفسیاتی اور سائیکولوجیکلی اعتبار سے بھی ہمیشہ اس ظہور کا انتظار میں رہنا ہے، امید رکھنی ہے، کبھی مایوسی کے شکار نہیں ہونا ہے. حالات کتنے خراب ہو جائیں، سچویشن کیسی بھی ہو جائے، لیکن ہمیں کبھی اپنی امید کو خدا پر، امام پر اپنی امید کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. یہاں تک ہماری بحث ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم جو ہے اگلے سیشن میں گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.